को उनकी खोई हुई खोया हुआ वकार जो है वो वापस दिलाए, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमारी ख्वाहिशात हैं। हमारा दुनिया में बहुत ज्यादा फंस जाना है और हमारा हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत है, ये चीजें जो हमें फिर अल्लाह के कलाम की तरफ बढ़ने नहीं देती, इनके रास्तों की तरफ आने नहीं देती। और अल्लाह सुब्हान तआला बस हमें तौफीक दे कि हम इन चीजों को पहचान लें। और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन लोगों से मुखातिब फिलहाल आप लोग कुरान के स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह ने तौफीक दी है। हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए कि अब हमें अमल करके दिखाना है इंशाल्लाह। साजी ने एक जुमला बोला था कि दीन का काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपको दीन का गम कितना लगा है। अल्लाह हमारे दिलों को यह गम लगा दे, हम भी तड़पें, जैसे कि ये अम्बिया कराम की सुन्नत है, खास करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमने देखा कि आप कितना ज्यादा उम्मत का गम भी रखते थे और फिक्र करते थे, तो हमने भी फिक्र करनी है सबके लिए, सोचना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। आगे शुरू करते हैं, उस्ताद जी हमारे साथ हैं, उस्ताद जी आप माइक लीजिए इंशाल्लाह, हम लोग शुरू करते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں اتنے پیارے نبی کی امت بنایا اور دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے امتی ہونے کا حق ادا کرے کرنے والا بنائے دنیا میں بھی جیسے اس نے ہمیں بن مانگے اپنے پیارے نبی کی امت میں کیا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی امت میں رکھے آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائے اور پھر ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین آئینہ ہے کہ وہ کردار کے غازی بھی تھے گفتار کے غازی بھی تھے آج ہم گفتار کے غازی تو ہیں کردار کے غازی بننے میں بھی وقت لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی سے انتھک کام کرنا ایک ہی رخ پہ چل کے سیدھے سیدھے اللہ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہو بنا دے ہم اپنے اس سفر میں جہاں تک پہنچ چکے ہیں رحیق کو مختوم میں پیج نمبر 603 پہ اب چلیے وہ وفود جس کو عام الوفود کہتے ہیں اس سال میں آئے تھے اصل میں اسلام کی یہ کامیابی کی ایک دلیل ہے کسی بھی چیز کی کامیابی کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ شروع میں آپ کو جا جا کر لوگوں کو بلانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے آج کی زبان میں آپ اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں لیکن جب آپ کی چیز بہترین ہوتی ہے پروڈکٹ اچھا ہے آپ کی کوالٹی بھی اچھی آپ کی کسٹمر سروس بھی اچھی قیمتیں بھی مناسب یعنی جب لوگ آپ کی کوالٹی سے متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں جانا پڑتا بلکہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ کسی بھی عام سطح سے لے کر خاص سطح تک جانے کے ذرائع ہیں تو جب اس مکہ فتح ہو چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے بعد مکہ کا ایک حکمران بنا دیا آپ کے دلوں میں رعب آ چکا ہے آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مختلف جگہ پہ پیش کروا دیا تو وفود چل رہے تھے جی آپ لکھئے کہ سب سے آخری کس وفد کا حال ہم نے پڑھا لکھئے اپنے گروپ میں اور جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے ان میں ہمارے لیے عمل کی باتیں جو تھی ٹیکسٹ کھول دیجئے اور ساتھی شیئر کریں کہ آپ کو کیا ملا ان وفود کے سفر سے اور عمل کے نقطے کیا ہیں میں تو بتاؤں گی لیکن آپ کو بھی جو بتا ہے اس میں سے بتائیے کہ آخری ہم نے کس وفد کے بارے میں پڑھا جی تقیف ثقیف کہنا چاہ رہے ہیں آپ وفد ثقیف جی وفد ثقیف تھا آج ہم کس پہ پڑھیں کس کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ یہ جو وفود تھے یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کی دلیل بھی تھے اور اسی طرح سے لوگوں کا اندر سے سرنڈر ہونا تھا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تلوار اٹھائے صرف اپنی حکمت عملیوں کے ساتھ مختلف علاقوں تک اپنی بات کی تو وفد ثقیف کا معاملہ جب پورا ہو چکا اور لوگ واقعی اس چیز کو پا چکے تو اس کے بعد پھر ہم جس سے آج شروع کریں گے وہ ہے شاہ یمن کا خط ٹھیک ہے یعنی اس دور کے بڑے بڑے بادشاہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ محسوس کرتے تھے تو آئیے ادھر سے شروع کریں گے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيق مختوم سیرت کی کتاب اس میں سے عام الوفود میں سے ہم مختلف وفود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آج ہمارے سامنے شاہان یمن کا خط تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان خمیر یعنی حارس بن عبد الکلال نعیم بن عبد کلال اور رعین حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا لفظ مشکل ہے لیکن بس سمجھ لیجئے کہ کسی حکمران کا خط آپ تک پہنچا نامہ بر یعنی خط لانے والے کون تھے مالک بن مرہ رہادی تھے ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک سے اور اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں اس کے علاوہ آپ نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا کیا پتہ چلا وہ کہتے ہیں نا کہ نہ بیٹھنا ہے نہ بیٹھنے دینا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مثل سیماب تھی اور علامہ اقبال نے اسی تصور کو بہت اجاگر کیا ہے کہ مسلمان جب ٹک کے بیٹھ جاتا ہے نا صرف اس کو یہ ہی فکر آ جاتی کہ چلو میرا ابدی ٹھکانہ بن گیا باپ دادا کے وقت تک یہ چیزیں بن گئیں اور پھر انہی گھروں اور انہی چار دیواریوں کے گرد زندگی گزار دینا اور اپنے بعد پھر اپنے بچوں کے ایسے ہی مستقبل کی فکریں کر دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے دیکھیں یہ بھی غم ہے ان کو بھی اختیار کرنا ہے لیکن جب امت صرف اپنے ذاتی غموں میں کھو جاتی ہے پھر اس کو وہی روٹی کپڑا اور مکان کا غم لگ جاتا ہے اور بس ان کے لیے جینے کے دو ہی راستے ہیں اپنی خوشیاں اور اپنے غم باقی چیزیں چلتی ہیں ساتھ لیکن وہ غم نہیں ہوتا وہ درد نہیں ہوتا وہ ایک فارغ وقت کا مشغلہ بن جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بالکل نہیں تھے آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ دین کا غم پیدا کیجیے اپنے لیے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے لیکن اللہ کے رستے میں جو اللہ کے دین کو آپ کی میری ضرورت ہے اس کی کوشش کرنی ہے پھر اس کے بعد ایک وفد حمدان ہے یہ وفد سن 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا نوٹ کیجئے گا 6 ماہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ دالیں دیر سے گلتی ہیں کہیں ریزلٹس نکلتے بھی نہیں ہیں تو کیا جنہوں نے کوشش کی وہ ناکام ہوئے نہیں ایسا نہیں ہوا پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد کو واپس بھیج دیں الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ حمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی آپ نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے پھر سر اٹھا کر فرمایا حمدان پر سلام حمدان پر سلام ایک تو بات نوٹ کیجئے کہ خوشی کی خبر سن کے سجدے میں جانا ہے ہمارے عموماً نفل پڑھے جاتے ہیں تو شکرانے کا سجدہ ہے جتنا مرضی لمبا کر لیجئے پھر دوسری بات دیکھیے کہ ایک گئے لیکن پورا فائدہ نہ ہو سکا دوسرے گئے تو فائدہ ہو گیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ خاص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے حضرت علی کی بات بھی وہی تھی جو ان سے پہلے خالد بن ولید کی بات تھی لیکن کبھی کبھی ایک ہی کام دو مختلف لوگوں کو دیا جاتا ہے کسی ایک سے بالکل نہیں ہو پاتا اور دوسرے سے وہ ہو جاتا ہے اس میں کسی کی شخصیت بھی نہیں ہوتی کبھی نصیب کی باتیں ہیں اور کبھی کچھ بیچ میں چھوٹی موٹی باتیں بھی ہوتی ہیں تو ہمیشہ لیڈر کو یہ چاہیے کہ جو وہ जो काम बेहतर कर सके उसको चुने। अगर कुछ अरसा एक काम किसी को दिया और वो ना कर सके तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, बल्कि दूसरे को देकर उसको किसी दूसरी जगह पे रखा जाए। हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों में, हम तब्दीली बर्दाश्त नहीं करते। इवन हुकूमत बदलती है तो आप देखिए कि कितना अरसा पहले से कंपेन चलती है और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो आप सब जानते हैं। पिछली हुकूमत अकली को तस्लीम नहीं कर रही, कोई कहता है धांधली हो गई, कोई कुछ हुई, तो तब्दीलियों को कबूल कीजिए। हम में से हर एक ने किसी वक्त तब्दील हो जाना है। तो खालिद बिन वलीद जैसे सहाबी के जिनको लोग कामयाबी की दलील समझते थे, उनको पीछे किया और अली को भेज दिया, कोई रिजेंटमेंट नहीं। मोमिन ने अल्लाह के लिए काम करना होता है, उसको छोटा काम करना पड़े बड़ा, ये छोटी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना उनको, तो लिहाजा आपने इस चीज़ को कोई इशू नहीं समझा। जिनको काम प्यारा होता है ना, वो लोगों की नाराज़गी और रजामंदी की खातिर काम ख़राब नहीं करते, वो जान पे खेल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम काम ख़राब नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद वफद बनी फजारा है, ये वफद 9 हिजरी में तबूक से नबी सल्लम की वापसी के बाद आया। इसमें 10 से कुछ ज़्यादा अफराद थे और सब के सब इस्लाम ला चुके थे। इन लोगों ने अपने इलाके की कहत साली की शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और दोनों हाथ उठाकर बारिश की दुआ की। आपने फरमाया, ए अल्लाह, अपने मुल्क और अपने चौपायों को सैराब कर, अपनी रहमत फैला, अपने मुर्दा शहर को जिंदा कर। ए अल्लाह, हम पर ऐसी बारिश बरसा जो हमारी फरियाद रसी कर दे, राहत पहुँचा दे, खुशगवार हो, फैली हुई हम आगीर हो, जल्द आए, देर न करे, नफा बख्श हो, नुकसान रसा न हो। ए अल्लाह, रहमत की बारिश अजाब की बारिश नहीं, और ना ढाने वाली, ना गर्क करने वाली, और ना मिटाने वाली बारिश। ए अल्लाह, हमें बारिश से सैराब कर और दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। आप देखिए क्या खूबसूरत अल्फाज हैं आपकी ज़ुबान मुबारक के। आज भी दुनिया में कई जगह ड्राउट होगा, कहत होगा, ये मसनून दुआएं मांग कर हम अल्लाह की रहमत को जोश में ला सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि दुआ करने में अल्लाह के नबी सल्लम कितने कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी बात जो कर रहे हैं उसमें कोई पहलू रहने नहीं दिया जा रहा। क्या मतलब कि इंसान जब भी दुआ मांगे तो चारों तरफ की खैर मांगे और जो नेमत है वो खैर बन के मिले। या बड़ी अहम बात लिखिएगा, सिर्फ बारिश नहीं मांगी, रहमत वाली बारिश मांगी। हम अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा कुछ नेमतें मांग लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अल्लाह आसानियों के साथ देना, अल्लाह खैर वाली देना। नुकसान क्या होता है कि वो नेमत तो मिल जाती है, कभी तो हम अल्लाह के रास्ते से ही हट चुके होते हैं। छोटी सी नेमत हमसे बर्दाश्त नहीं होती और हम उस नेमत को इतना बड़ा इम्तिहान बना लेते हैं अपनी ज़ात के लिए, और नतीजा क्या होता है कि फिर नमाज़ें भी गईं तो रोज़े भी गए और बस अल्लाह ही हमें कायम रखे तो हम कायम रहते हैं। तो नेमतों के साथ शुक्रगुजारी मांगिए, नेमतों के साथ दवाम मांगिए। और अल्लाह के नबी की एक दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका। ए अल्लाह, मैं तेरी नेमतों के जवाल से तेरी पनाह मांगता हूँ। नेमत ना हो सब्र हो जाता है, नेमत मिलकर छिन जाए इस पे सब्र मुश्किल हो जाता है। फिर आप देखिए कि दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा बोला है, ये नहीं कहा कि दुश्मनों को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। कभी कभी दुश्मन तबाह भी हो जाता है लेकिन आपकी मदद नहीं होती, यानी हमारी तू मदद कर, इनके हाल पे तू जान और ये जाने, यानी एक एक लफ्ज़ के अंदर बहुत ही हुसन है अगर हम इस पे गौर व फिक्र करें। फिर इसके बाद वफद नजरान है, ये बड़ा अहम वफद है, सूरत आले इमरान का शुरू का हिस्सा है। इसी वफद की आमद पर नाजिल हुआ, तकरीबन 60 के करीब आयात हैं, कहीं 428 का आता है, लेकिन आप जहाँ तक हज़रत ईसा से मुतल्लिक मज़ामीन देखते हैं तो वो इसी वफद की आमद पर नाजिल हुआ था। अब ये वफद नजरान, नून पर ज़बर, जीम साकिन, दोनों तरह पढ़ सकते हैं, नजरान, ठीक है। मक्का से यमन के रास्ते 7 मरहले पर एक बड़ा इलाका था जो 73 यानी 73 बस्तियों पर मुश्तमिल था। तेज़ रफ्तार सवार एक दिन में पूरा इलाका तय कर सकता था। इस इलाके में 1 लाख मर्दाने जंगी थे जो सब के सब ईसाई मज़हब के पैरोकार थे। आप सोचिए उस वक्त में 1 लाख की फौज क्या बड़ी फौज थी। नजरान का वफद सन 9 हिजरी में आया, ये 60 अफराद पर मुश्तमिल था। 24 यानी 24 आदमी अशराफ में से थे, अशराफ से थे यानी बड़े लोग थे, लीडर्स थे। जिनमें से तीन आदमियों को अहले नजरान की सरबराही और सरकर्दगी हासिल थी, एक आकिब पीछे से आने वाला, आखिर में आने वाला अकब से, जिसके जिम्मे अमारत और हुकूमत का काम था, और इसका नाम अब्दुल मसीह था। दूसरा सैयद था जो सकाफती और सियासी उमूर का निगरान था, और इसका नाम ऐहम या शुराहबील था। तीसरा असकफ, जिसको लाट पादरी कहते हैं ना आज की ज़बान में, जो दीनी सरबरा और रूहानी पेशवा था, इसका नाम अबू हारिसा बिन अलकमा था। आप नोट कीजिए कि उस दौर में भी क्रिश्चियंस का ये वफद कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना उन्होंने अच्छे तरीके से रखा। सहाबा इकराम कहते हैं हमने कभी इतना ऑर्गेनाइज गिरोह कोई देखा ही नहीं। आज भी तसव्वुर कीजिए ना कि अरब के सीधे साधे माहौल में अगर इस तरह के बहुत ही अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड लोग आ जाएं तो पूरे गाँव में शोर मच गया होगा ना कि जी को गोरे आए हैं, जी को बड़े एक्सपर्ट्स आए हैं। तो इससे पता चलता है कि कामों को शऊर से करना चाहिए। और इवन सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लम उस वफद की तारीफ़ करते हुए दिखते हैं कि कितनी शान से आया, कितने डिसेंट थे। तो दीनदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मुंह फट हो जाएं और बिल्कुल आपको होश ही कोई नहीं किसी चीज़ की, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, वफद ने मदीना पहुँच कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, फिर आपने इनसे कुछ सवालात किए और उन्होंने आपसे कुछ सवालात किए। इसके बाद आपने इन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान हकीम की आयतें पढ़कर सुनाई, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया और दरियाफ्त किया कि आप मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोज़ दिन भर तवक्कुफ़ किया, यानी खामोश रहे, नहीं बोलते थे। क्यों भला? सूरत नजम, वमा यंतिकु अनिल हवा। ये नबी तो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से बोलता भी नहीं है, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मगर सिर्फ इस ज़ुबान मुबारक पे वही आता है जिसकी अल्लाह ताला उनको वही के ज़रिए से खबर दे देता है। इससे क्या पता चलता है कि हर बात फौरन फौरन जवाब तलब नहीं होती, कुछ वक्त लगा लीजिए, सोच के बात कीजिए। जब जल्दबाजी होती है, पहले ये फिर वो, ये जो करेक्शंस हैं या कैंसलेशंस हैं या प्लान चेंज है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं था। आपने जो काम किया पूरे यकीन से किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, पूरे यकीन शरह सदर से काम करते थे, शायद ही कभी आपने कोई चीज़ मुलतवी की हो। और जब आपने सब्र किया, खामोशी से देखा, तो फिर उसके बाद जो आयतें नाजिल हुईं, ये वही हैं जिनका तज़किरा भी आपके सामने किया। सूरत आल इमरान, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन फयकून, अलहक्कु मिन रब्बिक फला तकुन मिनल मुमतरीन, फमन हाज्जक फीही मिन बादि मा जाक मिनल इल्म فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। आयत 59, 60 और 61 है आल इमरान की, तर्जुमा देखिएगा। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है, उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर इनसे कहा कि हो जा, तो वो हो गया। हक तेरे रब की तरफ से है, बस शक करने वालों में से ना हो। फिर तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद जो भी तुम में से इस ईसा के बारे में हुज्जत करे, तो उसे कह दो कि आओ हम बुलाएं अपने अपने बेटों को और अपनी अपनी औरतों को और ख़ुद अपने आप को, फिर मुबाहला करें। मुबाहला कहते गिड़गड़ा कर दुआ करना अल्लाह ताला से, बस अल्लाह की लानत ठहराएं झूठों पर। तो ये आयत मुबाहला आज भी बहुत ही जो तलब है, किसी गिरोह में जब दलाइल के साथ मामला ना तय पाए तो फिर इस तरीके से मुबाहला किया जाता है। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयात करीमा में इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अपने कौल से आगाह किया, और इसके बाद दिन भर इन्हें गौर व फिक्र के लिए आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब अगली सुबह हुई, हालांकि वफद के अरकान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी बात तस्लीम करने और इस्लाम लाने से इनकार कर चुके थे, यानी नहीं माने वो शुरू में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुबाहले की दावत दी कि ठीक है, तुम दलाइल से नहीं मानते कि इस्लाम सच्चा दीन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो फिर खुले मैदान में अल्लाह के सामने बात कर लेते हैं। खैर, आप हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा समेत एक चादर में लिपटे हुए तशरीफ़ लाए। पीछे पीछे हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा चल रही थी। जब वफद ने देखा कि आप बिल्कुल वाकई बिल्कुल तैयार हैं, तो तन्हाई में जाकर मशवरा किया। नोट कीजिएगा, हिम्मत नहीं थी। याद रखिए, सच को कोई आँच नहीं है। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दें, चौराहे पे खड़ा कर दें, हक बात कहने वाला पूरे शरह सदर के साथ बात करता है। लेकिन इस तरह की झूठी दलीलें और झूठे ढकोसलों पे खड़े हुए जो मजाहब और जो अफकार होते हैं ना, वो बातें बहुत करेंगे लेकिन मैदान में आके लड़ने को तैयार नहीं। जब मशवरा किया तो आकिब और सईद दोनों ने एक दूसरे से कहा, देखो मुबाहला ना करना, खुदा की कसम अगर ये नबी है और हमने इसे मुलानियत कर ली। मुलानियत कहते हैं एक दूसरे पे लानत करना, क्योंकि रहमत से दूरी मांगी जाती है ना दूसरे बंदे की जो झूठ है। तो अगर इसे मुलानियत कर ली तो हम और हमारे पीछे हमारी औलाद हरगिज़ कामयाब ना होगी। रुए ज़मीन पर हमारा एक बाल और नाखून भी तबाही से ना बच सकेगा। आखिर इनकी राय ये ठहरी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपने बारे में हकम बनाया जाए। चुनाचे उन्होंने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि आपका जो मुतालबा हो हम इसे मानने को तैयार हैं। इस पेशकश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जिज़िया लेना मंजूर किया और 2,000 जोड़े कपड़ों पर मुसालहत फरमाई, 1,000 माहे रजब में और 1,000 माहे सफर में, और तय किया कि हर जोड़े के साथ एक उखिया जो तकरीबन 152 ग्राम चांदी भी अदा करनी होगी। इसके इवज़ आपने इन्हें अल्लाह और रसूल के का ज़िम्मा अता फरमाया और दीन के बारे में मुकम्मल आज़ादी मरहमत फरमाई। इस सिलसिले में आपने इन्हें एक बाकायदा तहरीर लिख दी। इन लोगों ने आपसे गुजारिश की, यानी रिक्वेस्ट की, कि आप इनके यहाँ एक अमीन यानी अमानतदार आदमी रवाना फरमाएं। इस पर आपने सुलह का माल वसूल करने के लिए इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जराह रदी अल्लाहु अन्हो को रवाना फरमाया। यहाँ तक बात करते हैं, फिर आगे थोड़ी सी बात करेंगे। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लश्कर ग्रोह आया। आपने इनकी पूरी इज्जत की, बल्कि रिवायत में यहाँ तक आता है कि इन्होंने मस्जिद नबी में अपने तरीके पर इबादत की। नोट कीजिएगा, आज हम एक मसलक दूसरे के मसलक में जाकर नमाज ना अदा करने दें और कोई कर ले तो क्या हालात हों। इल्ला माशाल्लाह, चंद गिरोहों में शिद्दत पाई जाती है तो वहाँ तो बाद में मस्जिदों को धोया जाता है, और कुफर के फतने और फतवे और दूसरी बातें। इन्होंने अपने तरीके से इबादत की, इसलिए कि ला इकराह फिद दीन कद तबैना रुश्द मिनल गई। फिर दूसरी बात देखिए कि जब आपने पूरे दलाइल भी दे दिए और दावत मुबाहला दी तो इनको सामने आने की जरूरत ना हुई। आपने इनको गौर करने के लिए पूरा दिन दिया। ये हक होता है, ये सच होता है। ये जो झटपट के सौदे होते हैं ना, जल्दी कर लो पता ना चले, पोल ना खुल जाए, हक में ये नहीं होता। ठंडे दिल ठंडे दिमाग से प्यारे नबी ने ये दीन फैलाया। जो एक बार आपकी सोहबत में आ जाता उसको ये तो यकीन हो जाता था कि आप सच्चे हैं। तासुब के पर्दे हटते हटते टाइम लगता है, लेकिन आप देखिए कि इन्होंने अल्लाह के नबी को हकम बना लिया, थर्ड पर्सन। ये कितनी बड़ी ऑनर है नबी सल्लम के लिए। और आप बार बार सुन रहे हैं आजकल के सेशंस में कि हमारे प्यारे नबी की शान क्या थी। और इसी तरह से आप देखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उन्होंने मुबाहले की ना कबूल की, तो आपने कोई ताना नहीं दिया, बल्कि अपने अहले बैत को लेकर आए और कहा हम तैयार हैं। कोई ऐसे अपने बच्चों को लेकर आता है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये तक फरमाया कि अगर वो आज ये दावत कबूल कर लेते तो ये वादी उन पर आग बरसाती। यानी पिछली कौमों ने भी जब नबियों को झुटलाया या उनके मुकाबले पे आए तो आसमानी आफात आ गईं, तो गोया के इन्होंने सामने ना आकर अपना फ़ायदा किया। और यहाँ से ये बात भी पता चलती है आकिब और सईद की जो गुफ्तगू है कि देखो मुबाहला ना करना, यानी दिल में डाउट था, शक भी था, लेकिन बस वही बात है कि जुबान पे बात नहीं आती ना, लेकिन उनको यकीन था कि इस शख्स से मामला करके हम कभी भी जीत नहीं सकते। और फिर उसके बाद देखिए कि इतना ज्यादा माल उनसे मिला, खुद आए थे दीन सीखने, और जाते जाते फिर ये मान के भी चले गए कि जिजिया लेंगे। अब ये सवाल है कि जिजिया क्यों? अब इनकी हैसियत एक मुस्लिम मुल्क में गैर मुस्लिम की थी, यानी ये जिम्मी थे। जिम्मी कौन होता है? जिसका जिम्मा लिया गया हो। जैसे आज भी आप इन एक जैसे मुस्लिम लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम मुल्कों में अकलियतों के तौर पे रहते हैं, मिनोरिटीज़ के तौर पे रहते हैं, तो यहाँ तो टैक्स के जंगल में हर एक को फंसा दिया जाता है ना। तो इस्लामिक स्टेट्स में टैक्स नहीं होता, मुसलमानों से ज़कात ली जाती है और गैर मुस्लिमों से फिर जिज़िया लिया जाता है। तो आप देखिए, इन्होंने बड़ी खुशी से ये हर साल इतना कुछ देने की जो शर्त थी वो मंजूर की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये सच्चे नबी हैं और दीन के मामले में आज़ादी उनको मिल गई, क्योंकि ला इकराह फिर दीन। और आपने डॉक्यूमेंटेशन की ये भी लिखी है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हम बगैर लिखे जब काम करते हैं ना तो 101 गलत फहमियाँ होती हैं, बाद में किसी को नहीं पता होता। वो कहता ये सोचा था, वो कहेगा मैंने ये कहा था, वो कहेगा मेरी ये नीयत थी। तो ये बेकार तरीका है, सुन्नत तरीका है, हर चीज़ को लिख के कीजिए, चाहे सगे भाई बहन के माँ बहन हो रही हो। और ये जब उबैदा बिन जराह वाला वाक्य, ये बड़े खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि सर इतना ज़्यादा माल लेकर आना है तो कोई अमानतदार शख्स को भेजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, कल मैं आपको अमीनुल उम्मा को भेजूंगा। अब सब साथी बैठे हैं, सबको पता है कि हम में से किसी एक का नाम लेना है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं बार बार अपनी गर्दन ऊंची कर रहा था कि अल्लाह के नबी मुझे देख लें। देखिए ये भी अदाएँ थी ना आपकी, कि मेरी तरफ नज़र पड़े तो मुझे ये लक़ब मिल जाए कि मैं अमीनुल उम्मा हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने अबू बैदा बिन जराह को कहा, हाज अमीन उम्मती, ये मेरी उम्मत के अमीन है। खैर, इसके बाद इनके अंदर इस्लाम फैलना शुरू हुआ। अहले सीर का बयान है कि सईद और आकिब नजरान पलटने के बाद मुसलमान हो गए। इसको कहिए आप, ये है इस्लाम, तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। जिधर मुस्लिम्स का इंटरेक्शन गैर मुस्लिमों से होता था, उन गैर मुस्लिमों की कह लीजिए कि किस्मत खुल जाती थी। ये तो हम बेअमल और खोटे हैं ना, कितने सालों, चौथी चौथी नस्लें हैं हमारी यूरोप में, अमेरिका में तो शायद इससे भी ज़्यादा होंगी, कनाडा में देख लीजिए। सच्चा मुसलमान खुशबू की उस पोटली की तरह होता है कि जहाँ उसको रख दिया जाए ये हो नहीं सकता कि उसकी खुशबू फैले। हम अपना रंग ढंग, अपना एक एक इस्लाम का जाबता और उसका एक एक रिचुअल छुपा के आते हैं, किसी को पता ना चले। देखिए वो बताते थे, हम छुपाते हैं, तो फिर इस्लाम कैसे फैले? क्योंकि हम मरूब लोग हैं, वी आर इम्प्रेस्ड, वी आर नॉट टू बी इम्प्रेस्ड लोग हैं। तो सच्चा मोमिन कौन होता है? जो मुतासिर कुन होता है, वो अपना असर लोगों को देता है। और सच में बड़ी कशिश है, आप अधूरी जुबान से भी, आप बात से अधूरी बात कर देना लुकनत अली जुबान से, अल्लाह ताला उससे भी दिलों में मोहब्बत डालता है। तो बहरहाल इधर से फिर इस्लाम का आगाज़ हुआ, ये लोग रह कर गए मिले, तो बाद में इनके अंदर फिर इस्लाम आने लगा। तो हमेशा गैर मुस्लिमों से इंटरेक्ट करना इस सोच के साथ कि इनको मैं इस्लाम की खूबियाँ दूँ और ख़ुद सच्चा मोमिन बन के आना है। अब आप अच्छे मोमिन हैं तभी तो दूसरे को दिखाएंगे ना। आप देखिए कि आपने किसी को गहराई से ऊपर लेना है, मिसाल है कुएं के ऊपर आप एक कोई रॉड है उसको पकड़ के लटक के किसी दूसरे को नीचे से हाथ दे रहे हैं। अगर आपका अपना ही दूसरा हाथ छूट गया तो आप नीचे वाले को ऊपर कैसे लाएंगे, राइट? जब आपके हाथ में इस्लाम की डोरी है ना, वा तसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, तो फिर उसके बाद आप और मैं दूसरों को भी इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। तो अगर हम खुद गिरे तो फिर दूसरों को तो और ही गिराएंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने इनसे जिज़िया और सदकात लेने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को रवाना फरमाया, और ज़ाहिर है कि सदका मुसलमानों ही से लिया जाता है। तो ये वाक़यात हमें क्या बताते हैं, आप इसको किताब के सफ़ों की बजाय रियल लाइफ में लेकर देखिए, आज हम मुसलमानों का क्या रूप है। आज हम अपने इर्द गिर्द के गैर मुस्लिमों के लिए कैसी तस्वीर हैं, हम कैसी मिसाल है। कोई एक शख्स नबी पे उंगली उठा दे तो हमारा भी सोया हुआ ईमान जाग जाता है, और हमें ज़रूरत होती है ऐसे झटकों की, और वो भी ज़रा हमारी नब्ज़ पे हाथ रख के देखते हैं कि अभी मर तो नहीं गए पूरे। ये जो वाक़यात आपको इर्द गिर्द दिखते हैं ना, ये मुसलमानों के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, क्योंकि ये तो ईमान है कि मुसलमान का दिल के दिल में नबी की मोहब्बत बहुत है, लेकिन ये सोई हुई है, ख्वाहिशों के पलंदे के नीचे दबी होती है। वो कभी कभी एक करंट लगाकर देखते हैं कि अभी जिंदा है, हम जिंदा हो जाते हैं, शोर मचाते हैं। किसी ने एक कोटेशन भेजी हुई थी कि अल्लाह भला करे चाइना का, उसने बत्तियां बना दी, तो हम वो लगा कर नबी से मोहब्बत के दावे तो कर सकते हैं ना, वरना पता नहीं हम कैसे अपने नबी से मोहब्बत के दावे करते रबी अव्वल के मौके पे। बात सच है कि झूठ है, हमें इससे क्या लेना है। अपने आप को देख लें और नबी के साथ उसको मिक्स एंड मैच करके देखें क्या चीज़ उस स्केल्टन के साथ जुड़ती है क्या नहीं जुड़ती। आज आप सच्चे मुसलमान इस तरह के जैसे कार्बन कॉपी बनती है, वही ईमान, वही नज़रें अल्लाह पे, वही आपके अंदर एक एतमाद। और वी आर नॉट टू बी एम्बेरेस्ड मुस्लिम, वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। बन के दिखाइए ये जो कई कई सालों से मसले चल रहे हैं ये चंद दिनों में हल होंगे। ये आपने मैंने प्रोलोंग किया हुआ है मुसलमानों का गलबा, बगैर जंग से, बगैर तलवार के, बगैर लड़ाई के दिलों को जीतिए। क्योंकि तलवारें चलाने वाले बहुत हैं, हाथ वो है ही नहीं तलवारें चलाने वाले, लेकिन आज के दौर में हमें नबी के उसवे पे चल के उस मिशन को पकड़ना है और उसके मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद अगला वफद है वफद बनी हुनैफा। ये वफद भी 9 हिजरी में आया। आप देख रहे हैं कि ये सारे वफूद सन 9 हिजरी के अराउंड दिख रहे हैं, क्योंकि इस दौर में धाक मच गई थी। जैसे वो कहते हैं ना कि यदखुलू नफी दीनिल्लाही अफवाजा, फौजों की फौजें आ रही। क्या वो दिन था कि उमर अकेले जब मुसलमान हुए तो मक्का की पहाड़ियों में एक लर्जा तारी हो गया। एक आता था तो मुसलमान 10-10 दफ़ा गिनते होंगे, और अब एक नहीं पूरा पूरा इलाका, पूरे पूरे गिरोह ट्रूप्स आ रहे हैं। तो कभी सोचा था आपने? ये सच की पहचान है। शुरू में कम फैलता है, जमता है, जैसे दरख्त है ना, तो शुरू में उसके अंदर आप देखिए कि जो डंठल होता है कितना छोटा सा होता है और नीचे जड़ें कितनी फैली हुई हैं, लेकिन वो फैली हुई जड़ों का एसेंस एक स्टेम पर तने की सूरत में एक मोटी सी चीज़ दिखती है। ऐसे लगता है सिमट गए हैं, थोड़े हो गए हैं, थोड़ा हो गया है, हर तरफ से हिसार बंधा जा रहा है हमारे ऊपर। मुश्किलात है नहीं, वो अल्लाह आपकी स्ट्रेंथ बना रहा होता है। हर साल एक एक गिरफ्त लगती है दरख्त के अंदर, जब चंद फुट ऊपर जाता है तो फिर ऊपर देखिए कितनी शाखें, कितना झाड़। दरख्त तो खुद खुदा का अल्लाह, दरख्त तो खुद एक अल्लाह का पैगंबर बन के दिखता है। पूरा दीन आप सिर्फ एक दरख्त से सीख सकते हैं। और फिर ऊपर आप दरख्त नीचे मजबूत रखिए, जड़ें पुख्ता रखिए, देखिए कितना झाड़ होता है। ये इस्लाम के फैलने की दावत है। ऐसे ही होता है इस्लाम भी, नीचे से जमा हुआ, जड़ों में गए हुए लोग ठुके हुए, उनको कोई हिला नहीं सकता, उनको कोई अपनी जगह से नहीं कर सकता, ना वो बिकते ना वो खरीदे जाते। लेकिन उसके बाद फिर जो ऊपर वो बोझ अपने उठाते हैं, कितना फल लगता है, कितने पत्ते, कितनी टहनियाँ, और कितनों को साया देते हैं। तो अल्लाह हमें ईमान के मुताबिक एक दरख्त बना दे और हम अपने इर्द गिर्द वालों को साया देने वाले बने। अगला वफद जो बनी हुनैफा का है 9 हिजरी में ही आया। इसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब समेत 17 आदमी थे। इस शख्स का तो नाम सुनते ही तबीयत मचलने लगती है, क्योंकि मुसैलमा कौन था जिसने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में नबूवत का दावा किया था? इसका सिलसिला नसब क्या था? मुसैलमा बिन सुमामा बिन कबीर बिन हबीब बिन हारिस। ये वफद एक अंसारी साहबी के मकान पर उतरा, फिर खिदमते नबवी में हाजिर होकर हल्का बगोश इस्लाम हुआ, यानी एक्सेप्टेड द इस्लाम। अलबत्ता मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। तमाम रिवायात पर मजमूई नज़र डालने से मालूम होता है कि इसने अकड़, तकबर और अमारत की हवस का इजहार किया, यानी इसके दिल में लालच था, और वफद के बाकी अरकान के साथ नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर ना हुआ। नोट कीजिए, गया भी है लेकिन अपने कुछ होने के एहसास ने, मैं तो अहम हूँ, मैं सब में क्यों रहूँ, मैं ज़रा सबसे मुख्तलिफ क्यों ना दिखूँ, यानी आप कह लें कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार जो बंदा होता है ना, वो कहते हैं मुझे ऊंची कुर्सी दे, मुझे ज़रा अच्छे तरह से बुलाए, मेरे लिए एक फूलों का बके रखिए। क्योंकि अंदर बड़ाई थी ना, तो बड़े बनने वाले अल्लाह के नबी की खिदमत में फिर आकर इस्लाम नहीं कबूल करते। यही हुआ, अल्लाह के नबी सल्लम ने पहले तो कौलन और फेलन अच्छे और शरीफाना बर्ताव के जरिए इसकी दिलजोई करनी चाहिए, लेकिन जब देखा कि इस शख्स पर इस बर्ताव का कोई मुफीद असर नहीं पड़ा तो आपने अपनी फरासत से ताड़ लिया कि इसके अंदर शर है। यहां से देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मिजाज शनास होना, लोगों के एक्शंस और उनके रवैयों से पहचान लेना कि इनके अंदर खैर है कि शर है, ये भी पता चलता है। इससे कबल नबी सल्लम ये ख्वाब देख चुके थे कि आपके पास रुए ज़मीन के ख़जाने ला कर रख दिए गए हैं और इसमें से सोने के 2 कंगन आपके हाथ में आ पड़े हैं। आपको ये दोनों बड़े गिरां और रंज दे महसूस हुए, चुनाचे आपको वही की गई कि इन दोनों को फूंक दीजिए। आपने फूंक दिया तो वो दोनों उड़ गए, यानी जैसे फूंक मारें तो चीज़ उड़ जाती है। इसकी ताबीर आपने ये फरमाई कि आपके बाद दो कज़्ज़ाब परले दर्जे के झूठे निकलेंगे। चुनाचे जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अकड़ और इनकार का इजहार किया, वो कहता था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबारे हुकूमत को अपने बात मेरे हवाले करना तय किया तो मैं इसकी पैरवी करूंगा। देखिए, ये तो शर्तें मनवाने आए हैं, मानने वाले थोड़ी हैं। तो याद रखिए, जो मनवाने आते हैं ना, वो नहीं मानते। मानते वो है कि जो दिल से साथ जुड़ने की नीयतें और इरादे किए हुए आते हैं, तो उनको इस चीज़ का यकीन आ जाता है कि वाकई ये फिर अपनी खैर के लिए आए हैं। अपने आप को उस चीज़ के साथ लेकर चलने वाले लोगों में से ये शामिल होते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसका ये कहना कि वो कहता था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबारे हुकूमत को अपने बात मेरे हवाले करना तय किया तो मैं आपकी पैरवी करूँगा। तो गोया कि वो तो फिर आपका कोई कह लीजिए कि खलीफा बनने के लिए आया, या उसने आपके लिए ने खुद को सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो आपके बाद आप लोगों को अपनी तरफ माइल होता देखने के लिए था। तो बहुत दफ़ा याद रखिए, खुद नुमाई ये एक ऐसी आदत होती है कि जो लोगों के अंदर से फिर वो अकड़ निकलने नहीं देती। तो जब दिल में ऐसी बुराई हो तो उसको हिदायत कहाँ मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए। इस वक्त आपके हाथ में खजूर की एक शाख थी और आपके हमरा आपके खतीब हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रदी अल्लाह अन्हो थे। मुसैलमा अपने साथियों के दरमियान मौजूद था। आप इसके सर पर जा खड़े हुए और गुफ्तगू फरमाई। उसने कहा, अगर आप चाहें तो हम हुकूमत के मामले में आपको आज़ाद छोड़ दें, लेकिन अपने बाद इसको हमारे लिए तय फरमा दें। यानी गम क्या पड़ा हुआ है कि हमें कुछ मिल जाए। आपकी ज़िंदगी में ठीक है, इट्स ओके, लेकिन बाद में फिर हमें दें। आपने खजूर की शाख की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अगर तुम मुझसे ये टुकड़ा चाहोगे तो मैं तुम्हें ये भी ना दूंगा, और तुम अपने बारे में अल्लाह के मुकर्रर किए हुए फैसले से आगे नहीं जा सकते। अगर तुमने पीठ फेरी तो अल्लाह तुम्हें तोड़ के रख देगा। खुदा की कसम, मैं तुझे वही शख्स समझता हूँ जिसके बारे में मुझे ख्वाब जो दिखलाया गया है, और ये साबित बिन कैस हैं जो तुम्हें मेरी तरफ से जवाब देंगे। इसके बाद आप वापस चले आए। बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फरासत से कर लिया था, यानी मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा वापस जाकर पहले तो अपने बारे में गौर करता रहा, फिर दावा किया कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कारे नबूवत में शरीक कर लिया गया। देखिए कितनी जुर्रत की बात है। चुनाचे इसने नबूवत का दावा किया और सजा घड़ने लगा, यानी कहने लगा कि मेरे ऊपर भी शायरी होती है, मेरे ऊपर भी नबूवत उतरती है, और इस तरह की बातें घड़ घड़ के पेश करने लगा कि देखो मेरे ऊपर वही आई है। अपनी कौम के लिए जिना और शराब हलाल कर दी, और इन सब बातों के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये शहादत भी देता रहा कि आप अल्लाह के नबी हैं। नोट कीजिए, ये है झूठे मुदियाने नबूवत वालों के चाल चलन। नाम नबी का लेते हैं, वरना तो आप लिखे ना, कौन मानेगा उनको? एक मुसलमान, कमज़ोर से कमज़ोर अकीदे का मुसलमान भी नबी के नाम को निकलता देखकर तो इस्लाम पे नहीं कायम रहता। नाम नबी का लेता लेकिन जिना और शराब हलाल की। ये थी वो बातें, वो अमेंडमेंट्स जिसकी वजह से इसने भी अपने साथ एक ग्रोह कसीर को कर लिया। याद रखिएगा, लोगों की नज़रें हमेशा उस शख्स पे और उस सोच पे होती है जो ख्वाहिशों के साथ दीन की दावत दे। ख्वाहिशें भी पूरी करो, इबादतें भी करो, चंदे भी दो, दावतें भी करो, मस्जिदें भी बनाओ, और साथ अपनी मर्जियां करते रहो, तो इसमें बड़ी कशिश होती है। इस शख्स की वजह से इसकी कौम फितने में पड़कर इसकी पैरोकार और हम आवाज़ बन गई। नतीजतन इसका मामला संगीन हो गया। इसकी इतनी कदरों मंजिलत हुई कि इसे यमामा का रहमान कहा जाने लगा। जी, रहमानुल यमामा इसका लकब था। अब इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा। सुनिएगा इसका ज़रा मजमून। पता क्या चला कि इंसान की तहरीर, कल के दौर में वो ख़त होते थे, फिर ईमेल्स हो गई, और आज के चिट चैट मैसेजेस। तहरीर बंदे के अंदर को खोल के दिखा देती है। क्या कहा? मुझे इस काम में आपके साथ शरीक कर दिया गया है। आधी हुकूमत हमारे लिए है और आधी कुरैश के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उसने अपने लोगों के तरफ आदि और आदि कुरैश की तरफ करके कहा, आपने फरमाया ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है और इंजाम मुत्तकियों के लिए है। यानी आपका जवाब कितना नफ़तुला था, कोई बुरा नहीं कहा, कोई उसको लट डाउन नहीं किया, हकीकत खोल दी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इब्ने नवाहा और इब्ने असाल मुसैलमा के कासिद बनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, तुम दोनों शहादत देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उन्होंने कहा, हम शहादत देते हैं कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, अगर मैं किसी कासिद को कत्ल करता तो तुम दोनों को कत्ल कर देता। यानी उस दौर में भी इतना बड़ा जुर्म था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने 10 हिजरी में नबूवत का दावा किया था और रबीउल अव्वल 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के अहद यानी खिलाफत सिद्दीकी में यमामा के अंदर कत्ल किया गया। इसका कातिल वही वख्शी था जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को कत्ल किया था। याद रखिए कि ये शख्स जब मुसलमान हुआ वाशी, तो इसने कहा था कि मैंने नबी सल्लम का दिल दुखाया है कि आपके प्यारे अजीज़ चचा को कत्ल किया, तो अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ले कि मैं अपने इस गुनाह का कफ़ारा कर सकूं। तो अल्लाह ने फिर इससे ये काम लिया कि झूठी नबूवत के दावेदार को कत्ल करवा दिया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों के पास जवाज़ निकल आते हैं। और आप देखिए उस दौर में भी इसके साथ लाखों लोग थे। क्या पता चला कि लोग तो कल नाम होते हैं, चौपाइयों की तरह भेड़ चाल चलते हैं, जिसने बातों में लगाया उसके पीछे चल पड़े, अकल नहीं इस्तेमाल करते अक्सर लोग। तो झूठे से झूठे बंदे को भी अपने साथ एक जमे गफीर मिल जाता है, एक बिग क्राउड होता है। इसलिए कभी लोगों की कसरत को देख के रश्क ना करें। मेजॉरिटीज अथॉरिटी नहीं होती, अल्लाह ने हक में जो अथॉरिटी रखी है वो मेजॉरिटी में कभी नहीं हो सकती। अकेले हैं हक पे रहिए, सारी दुनिया साथ छोड़ दे, फतह आप ही की होगी इंशाअल्लाह ताला। एक तो मुदाइये मुदाइये नबूवत यानी एक तो नबूवत का दावेदार ये था जिसका इंजाम हुआ ये। एक दूसरा शख्स था नबूवत का दावा करने वाला, उसका नाम था अस्वद अंसी, जिसने यमन में फसाद बरपा कर रखा था। इसे नबी सल्लम की वफात से सिर्फ एक दिन और एक रात पहले हजरत फिरोज ने कत्ल किया। फिर इसके आपके पास इसके मुतल्लिक वही आई और आपने सहाबे कराम को इस वाक़े से बाखबर किया। इसके बाद यमन से सॉरी इसके बाद यमन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के पास बाकायदा खबर आई, यानी ये बीमार आ गया। तो आप देखिए कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ झूठ ही होता है, सच सच होता है। और नबी सल्लम के इतने करीब के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे, तो अब तो फितनों का दौर है। अल्लाह के नबी ने खबर दी थी कि मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब उठेंगे, और एक एक करके उठ चुके जा चुके, उनको अल्लाह ताला ने उनको कैसे झूठा किया। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, जिनको बात ना समझ आए उसको बात समझ आती भी नहीं है। और ये वो चीज़ें थी कि जिनको जिनमें पढ़ने के बाद फिर लोगों को सच और झूठ का फ़र्क भी पता चल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेदार मगज़ किस्म के लीडर थे कि आपने अपने साथियों को भी ट्रेन कर दिया था। आपको भी पता लग जाता था कि कौन कहाँ से बोल रहा है। तो बहरहाल अब ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनमें अमल की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ हम इस सोच के साथ चल रहे हैं आगे कि इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। ये सीरत का सफ़र तो बार बार का सफ़र है, इसको पढ़ना भी है और इस पर गौर व फिक्र भी करना है। तो 14th नंबर यानी 14वां नंबर पे जो ग्रोह आया उसका नाम था वफद बनी आमिर बिन सासा। इस वफ़द में दुश्मन खुदा आमिर बिन तुफ़ैल हज़रत लबीद का ख़ियाफ़ी भाई यानी सुतेला कह लीजिए भाई था, अरबत बिन कैस, खालिद बिन जाफ़र और जब्बार बिन असलम शामिल थे। ये सब अपनी कौम के सरबर आबुर्दा यानी बहुत बड़े बड़े लीडर थे और शैतान थे, यानी इनकी सोच शैतानी थी। आमिर बिन तुफ़ैल वही शख्स है जिसने बेरे माऊना बरकतें कुएं को माउना उसका नाम था। यहाँ पर 70 सहाबा कराम को शहीद कराया था। इन लोगों ने जब मदीना आने का इरादा किया तो आमिर और अरबत ने बाहम साजिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर अचानक कत्ल कर देंगे। चुनाते जब ये वफद मदीना पहुँचा तो आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की और अरबत घूम कर आपके पीछे पहुँचा और बलिश्त भर तलवार म्यान से बाहर निकाली, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने इसका हाथ रोक लिया और वो तलवार बेनियाम न कर सका। अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पर बददुआ की, जिसका नतीजा ये हुआ कि वापसी पर अल्लाह ताला ने अरबत और इसके ऊँट पर बिजली गिरा दी, जिससे अरबत जल मरा। इधर आमिर एक सलूलिया औरत के हाँ उतरा, उसका कबीला था, और इसी दौरान इसकी गर्दन में गिल्टी निकल आई। इसके बाद वो ये कहता हुआ मर गया। आह, ऊंट की गिल्टी जैसी गिल्टी और एक सलूलिया औरत के घर में मौत। यानी बड़ाई का एहसास इतना था कि अपनी इस तरह की मौत को वो पसंद नहीं कर रहा था। सही बुखारी की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, मैं आपको 3 बातों का इख्तियार देता हूँ। पहली बात है कि आपके लिए वादी के बाशिंदे हों और मेरे लिए आबादी के। दो, या मैं आपके बाद आपका खलीफा हूँ। हाँ, दूसरी बात, और वरना यह कि मैं गतफान को 1,000 घोड़े और 1,000 घोड़ियों समेत आप पर चढ़ा लाऊंगा। यानी आपको धमकियां दी। यानी आप देखिए कि बात करने का अंदाज कितना गुस्ताखाना है। दुनिया के सबसे बाइज्जत इंसान, वो जिसके पास आसमान से खबरें आती थी, इस बदतमीजी के साथ बात करना और फिर अल्लाह के नबी को इस तरह से चैलेंज करना। आप देखिए कितना हौसला था ना नबी सल्लम का। लोगों की बुरी से बुरी बातें भी सुन लेते थे, बर्दाश्त करते थे, क्योंकि अंदर आजजी थी। खैर, उसने कहा कि मैं घोड़े आपके ऊपर चढ़ा लूंगा। इसके बाद वो एक औरत के घर में ताउन का शिकार हो गया, जिस पर इसने फरते गम से, यानी बहुत ही गम से, सैडनेस से कहा, क्या ऊंट जैसी गिल्टी, ऊंट की गिल्टी जैसी गिल्टी, और वो भी बनी फलां की एक औरत के घर में, मेरे पास मेरा घोड़ा लाओ। फिर वो सवार हुआ और अपने घोड़े ही पर मर गया। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे आने वाला बचे आज तक? वो आपका दौर था या क़यामत तक आने वाला कोई भी शख्स होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ज़ुबान से गलत बात निकाले और वो बच जाए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में कई बार कह दिया कि वह अल्लाह या सिमु का मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। कहीं फरमाया कि हम आपको मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले में काफ़ी हो जाएंगे। तो कभी अगर ऐसी कोई इधर उधर की बात सुने तो गम ना करें, अपने आप को और सुन्नत के करीब कर दें, अपने आप को सीरत के करीब कर दें, आपके उसवे हसना पे अमल करने की और तलब रखिए। आप देखेंगे कि यही है वो शर में से खैर निकलने वाली बात। फिर अगला वफद क्या था? वफद तजीब। ये वफद अपनी कौम के सदकात को, जो फकीरों से फाजिल बच गए थे, लेकर मदीना आया। यानी इतने सदकात है कि सारे फकीरों को दे दिए फिर भी बच गए, सुबहान अल्लाह। वफद में 13 यानी 13 आदमी थे जो कुरान और सुनन यानी सुन्नत के रास्ते पूछते और सीखते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें दरियाफ्त की तो आपने वो बातें इन्हें लिख दी। वो ज्यादा अरसा नहीं ठहरे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तहाइफ से नवाजा तो उन्होंने अपने एक नौजवान को भी भेजा जो डेरे पर पीछे रह गया था। नौजवान ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया, हजूर, अल्लाह की कसम, मुझे मेरे इलाके से इसके सिवा कोई और चीज़ नहीं लाई है, क्या आप अल्लाह अज़्ज़ व जल से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें कि वो मुझे अपनी बख्शिश और रहमत से नवाजे और मेरी मालदारी मेरे दिल में रख दे। कितनी खूबसूरत बात है, आप देखिए, आपने उसके लिए ये दुआ फरमाई। नतीजा ये हुआ कि ये शख्स, क्या नतीजा हुआ कि वो शख्स सबसे ज्यादा कनात पसंद हो गया। और जब इर्तदाद की लहर चली तो सिर्फ यही नहीं कि वो इस्लाम पर साबित कदम रहा, बल्कि अपनी कौम को वाज़ो नसीहत की तो वो भी इस्लाम पर ही साबित कदम रही। फिर अहले वफद ने हज्जतुल विदा सन 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मुलाकात की। तो आप देखिए, जिन्होंने नबी सल्लम से अच्छी दुआएं कराई, अल्लाह ने उनको अच्छी दुआएं भी दिलवा दी, और जिन्होंने जो बददुआओं के मुस्तहिक हुए तो उनको वो बददुआएं भी लग गईं। और ये कितनी प्यारी दुआ है ना, कि मेरी मालदारी मेरे दिल में रख दे। आप भी ये दुआ किया करें, ये दिल से माल का हौका निकाल देंगे ना, तो बहुत सुकून की नींद सोएंगे। हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चे, हाय फैक्ट्री डाउन हो गई, हाय कारोबार चला गया, हाय ज़मीन के रेट गिर गए। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, कहीं इसी आह में किसी दिन आ भी ना चल बसे। दिल का गिना मांगिए, लैसल गिना बिल माल, गिना माल से नहीं होता, बल्कि गिना कैसे होता है। आज सुबह के सेशन में एक जुमला निकला था जिसको साथियों ने फिर याद कर लिया कि आप अमीर नहीं है ना, पर आप कीमती बहुत हैं। कुरान पढ़ा हुआ बहुत कीमती शख्स होता है। जब आप कीमती हो जाते हैं ना, तो आपको फिर माल की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि लोग जो चीज़ पैसे के साथ भी नहीं पा सकते, वो अल्लाह ताला आपको आपकी आला ज़रफ़ी की वजह से और आपके आला किरदार की वजह से अता फरमा देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इर्तदाद की लहर चली, यानी जब लोग छोड़ छोड़ कर इस्लाम से जा रहे थे, तो अल्लाह ने इस शख्स को इस्तकामत पे रखा, साबित कदम रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लम की दुआ का असर, ये भी लिखिएगा कि अल्लाह अपने नबी की दुआ को कबूल करता था। किसी के बारे में आप अगर दुआ दे देते या कोई बददुआइया कलिमात निकल जाते, तो वो पत्थर पे लकीर की तरह साबित हो जाते थे बाद में। फिर इसी तरह एक वफद था, वफद तई, इस वफद के साथ अरब के मशहूर शख्स सवार ज़ैदुल ख़ैल भी थे। इन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आपने इन पर सलाम पेश किया, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत अच्छे मुसलमान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि मुझसे अरब के जिस किसी आदमी की खूबी बयान की गई और फिर वो मेरे पास आया, तो मैंने इसे इसकी शोहरत से कुछ कमतर ही पाया। यानी हमारे यहाँ कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, तो लोग दूर दूर से बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन जब आप किसी को करीब से देखते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिलती। मगर इसके बरक्स ज़ैदुल ख़ैल की शोहरत इनकी खूबियों को नहीं पहुँच सकी, यानी शोहरत जितनी थी वो उनकी खूबियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे लिए भी ऐसी गवाहियाँ कायम करे, जो लोग हमारे करीब आए उनको हम उनसे अच्छे लगे जो कि हमें दूर से देखते हैं। और आपने उनका नाम ज़ैदुल ख़ैर रख दिया। आप देखिए यहाँ से कितना प्यारा तकाबुल है। नबी सल्लम लोगों को प्यारे प्यारे नाम देते थे। नाम क्या था? ज़ैदुल ख़ैल, ख़ैल कहते हैं घोड़े को, और खैर करके खैर से जोड़ दिया। हमने अपना एक कोर्स का नाम भी इसी नाम पे रखा था कुछ साल पहले। यानी आप देखिए कि खैर का ज़ादे राह बन गए। अल्लाह हमें भी खैर की चाबियाँ और शर के ताले बना दे। इसी तरह सन 9 हिजरी और 10 हिजरी में पे दर पे, यानी मुसलसल वफूद आए। अहले सीयर ने यमन, अस्द, कुदाया के बनी साद, हुज़ैम, बनी आमिर बिन कैस, बनी असद, बहरा, खौलान, महारिब, बनी हारिस बिन काब, गामित, बनी मुन्तफिक, सलामान, बनी अबस, मुज़ैना, मुराद, ज़बीत, कंदा, ज़ी मुर्रा, गस्सान, बनी ऐश और नहा। पढ़ने भी आते हैं हमें ये नाम, क्या मुश्किल नाम थे अरबों के। आप देखिए आज शायद ही कोई मेरे हाल ये नाम रखता होगा। बहरहाल ये सब जगह के वफूद भी आए। नखा का वफद आखिरी वफद था, जो मुहर्रम 11 हिजरी के वस्त में आया था और 200 आदमियों पर मुश्तमिल था। बाकी बेशतर वफूद की आमद 9 हिजरी और सन 10 हिजरी में हुई। सिर्फ बाज़ वफूद 11 हिजरी तक मुतख़िर हुए थे, यानी पोस्टपोन हुए थे। तो 9 से लेकर 11 तक का ये जो दौर था, इसमें वफूद आते ही रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते रहे। क्या खूबसूरत समा होता का मसे नबी का, ऐसे लगता है हर वक्त कोई एक ग्रोह आ रहा है, एक जा रहा है, और कैसे मोहब्बत से लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते होंगे। और इन वफूद की पे दर पे आमद से पता चलता है कि इस वक्त इस्लामी दावत को किस कदर फरोग था और कबूलिए आम हो चुका था, यानी इस्लाम मकबूल हो चुका था, शोहरत पा चुका था। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि अहले अरब मदीना को कितनी कदर और ताज़ीम की निगाह से देखते थे, हत्ता कि इनके सामने सिपर अंदाज यानी सरेंडर होने के सिवा कोई चारा ही नहीं समझते थे। यानी अहले अरब को मुसलमानों के सामने सरेंडर होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं मिलता था। दर हकीकत मदीना जज़ीरतुल अरब का दारुल हुकूमत बन चुका था और किसी के लिए इससे सरफे नज़र मुमकिन ना था। अलबत्त हम ये नहीं कह सकते कि इन सब लोगों के दिलों में दीन इस्लाम असर कर चुका था, क्योंकि इनमें अभी बहुत से ऐसे अक्खड़ बद्दू थे जो महज अपने सरदारों की मुताबियत में मुसलमान हो गए थे। वही बात है कि अन्नास वला दीन मलूक ही हम, कि जो बड़े करते हैं छोटे वो करते हैं, लेकिन कईयों के दिल में इस्लाम कोई नहीं थाया हुआ, वरना इनमें कत्लो गारत गरी का जो रुझान जड़ पकड़ चुका था, इससे वो पाक साफ नहीं हुए थे। क्या पता चला कलमा पढ़ लिया था, अभी तरबियत नहीं हुई, अभी तजकिया नहीं हुआ। याद रखिए, सारी जिंदगी का सफर है, होते होते होता है, और अभी इस्लामी तालीमात ने इन्हें पूरे तौर पर मुहज्जब नहीं बनाया था। इससे एक और बात भी पता चलती है कि जो नए नए इस्लाम की तरफ लोग आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, उनमें बहुत सी कमियां होंगी, तो अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ फिर वो कमियां दूर कर देते हैं। चुनाचे कुरान करीम की सूरत तौबा में इनके बाज़ अफराद के औसाफ़, यानी उनके वसफ़ और उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे बयान किए गए। अल अराब व अशद्दु कुफ्रम व निफाक़म व अजदर वजदरु अल्ला यालमु हुदूद मा अनज़लल्लाहु अला रसूलिही वल्लाहु अलीमुन हकीम व मिनल आराबी मन यत्तखिज़ु मा युन्फिकु मग़रमन व यतरब्बस यतरब्बसु बिकुम अद्दवाइर अलैहिम दाइरतुस्सौ वल्लाहु समीउन अलीम। अरब यानी बद्दू कुफर और निफाक में ज़्यादा सख्त हैं, और इस बात के ज़्यादा लायक हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल पर जो कुछ नाजिल किया है इसके हदूद को ना जाने, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और बास अरब जो कुछ खर्च करते हैं इसे तावान समझते हैं, और तुम पर गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं, यानी कि अल्लाह करे कि वक्त का कोई ऐसा पहिया घूमे कि मुसलमान किसी मुश्किल का शिकार हो जाए। इन ही पर बुरी गर्दिश है, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला, यानी जो किसी का बुरा चाहता है आखिर में उसका अपना बुरा होता है। जबकि कुछ दूसरे अफराद की तारीफ़ की गई और इनके बारे में ये फरमाया गया, वमिनल आराबी मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युन्फिकु कुरुबातिन इंदल्लाहि व सलावातिर रसूल अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही इन्नल्लाहा गफूरुन रहीम। और बस अरब अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह की कुर्बत और रसूल की दुआओं का जरिया बनाते हैं। याद रहे ये इनके लिए कुर्बत का जरिया है, अन करीब अल्लाह इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। कितनी खूबसूरत आयतें हैं 11वें पारे के बिल्कुल शुरू में ही आप पढ़ते हैं, तो गोया के फिर इस्लाम आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी तरबियत हुई। जहाँ तक मक्का, मदीना, सकीफ, यमन और बहरैन के बहुत से शहरी बाशिंदों का ताल्लुक है, तो इनके अंदर इस्लाम पुख्ता था, और इन्हीं में से कुब्बार सहाबा और सादात मुस्लिमीन हुए। सादात यानी सैयद से, यानी अच्छे अच्छे लोग इन इलाकों से हुए। इससे पता चलता कि बाज़ इलाकों, बाज़ शहरों की भी एक शोहरत होती है। किसी शहर के लोगों में फितरतन दीन का रुझान ज़्यादा होता है, किसी का कम। तो बहरहाल यहाँ पे हमारा वफूद का टॉपिक पूरा हुआ। पढ़ते पढ़ाते मेरे दिल के अंदर से यही दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह जैसे कल इस्लाम फैला और लोग जौक दर जौक आए, आज भी हमें ये बहारें दिखा। हम जिस मुल्क में हों, जिस शहर में हों, जो कोशिशें दीन के नाम पे हो रही हों, तो लोग उनको कबूल करके वाकई जौक दर जौक आएँ, क्योंकि आज के दौर में इसी का कहत है। खाने की दुकानें बहुत, पीने की बहुत, और सब चीज़ें दुनिया की मौजूद हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें जहाँ से अच्छी तालीमात मिलती हैं उसके बारे में अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते का फ्यूल बनाए। अगला टॉपिक बहुत ही खूबसूरत होगा जो कल लेंगे इंशाल्लाह, और वो क्या है कि दावत की कामयाबी और असरात, यानी जिसको पढ़ने के बाद वाकई दिल खुल जाता है ना, और खिल जाता है और खुश होता है कि अच्छा इतने सालों की कोशिशों का नबी सल्लम को कितना प्यारा बदला मिला। तो उसके लिए कल तैयार रहिए, अभी आप लोग माइक लेके शेयर कर सकते हैं आज के इस सेशन को सुनने के दौरान आपके जहन में क्या आ रहा था। जी आप लोग माइक होल्ड कीजिए।
जजाकल्लाह खैरन कसीरा वासन अल जजा सा जी, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला, बहुत ही दिल खुला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी सर जी अभी कि बाकी कुछ जगहों का भी मुकद्दर होता है, और जैसे वफूद हमने पढ़े, कुछ आए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अल्लाह ताला ने उनके दिलों को पे कुछ भी असर ना हुआ इस्लाम का, और उल्टा क्या कि नबूवत के दावे शुरू हो गए, और अल्लाह अकबर कबीरा। बाकी ये अल्लाह सुभान तआला का खास करम फजल और हिदायत अल्लाह तआला ने रखी हुई है। लेकिन ये बात तो आज के इस टॉपिक को पढ़ते हुए मेरे दिन में आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बात, साफ, ये हक है साफ, और ये बातें लेना, आप झुके ना, आप घबराए ना, पीपल कॉन्शियस हुए कि लोग क्या कहेंगे, आए फिर ये कहीं नाराजी ना हो जाए, चलो ये इनकी एक मान लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना मुफद नजरान का कि वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप था, और सहाबा कराम भी इनकी तारीफ आती है हम करते थे, और आप ने भी की, लेकिन सीधी साफ क्लियर दावत आप ने इनको दी, अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारे लिए इसमें अमल की बहुत सी बातें निकलती हैं, अल्लाह सुबहाना तारा बस हमें इन पे अमल की तौफीक दे, बहुत ईमान बूस्टिंग था आज का भी। और ये भी चीज के आज हम अपने इर्द गिर्द के जो गैर मुस्लिम हैं उनको इस्लाम का क्या नमूना दे रहे हैं ना, ये बात बहुत ही एक जैसे एक दुख की राह क्या ना, अल्लाह अकबर कबीरा। रियली मुसलमान तो बहुत है, लेकिन क्या दिया ना हमने इन लोगों को, क्या दिया है? हम अच्छे मोमिन खुद होंगे तभी तो दूसरों को दिखाएंगे। जी सिस्टर्स, अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग हैंडल्स कर सकते हैं, आप लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह। जी खैर के साथ शर है बिल्कुल, और हर शर में भी खैर है, माल की मोहब्बत दिल में नहीं आनी चाहिए ना, ये दुआ कितनी प्यारी उन्होंने मांगी मंगवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि दिल दिल के गुनाह की बात की ना, तो हमने भी इंशाल्लाह इस दुआ को हमने भी इंशाल्लाह मांगना है, और शख्सियत परस्ती के फितने से बचना है इंशाल्लाह, शख्सियत परस्ती नहीं आने देनी। और सिस्टर्स बाकी लोग लिखे, अब क्या सीखा आप लोगों ने, क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि जब भी हम सीरत का सेशन लेते हैं तो ईमान बढ़ता है? किस किस को ये फील होता है? मुझे तो बहुत हर दफा में फील होता है, हर दफा जब भी कोई भी एक, चाहे वो आजकल माशाल्लाह रहबरे कामिल भी आ रहा है ना, साजी का दिन का टाइम होता है उस टाइम पे, तो वो भी बहुत ईमान घुसने वस्ते बड़े मुश्किल पहलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों ने, हम लोग देख रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल, अल्लाह सुबहाना तआला से बस उस टाइम पे यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तआला हमें आप सल्लम के फुटस्टेप पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और देखिए कि इस्लाम किस तरह से फैलाना, और अल्लाह सुबहाना तआला ने किस तरह लोगों को अल्लाह अकबर कबीरा चुन चुन के, ऐसे जैसे चुन चुन के आप सल्लम की गोद में डाला, और शुरू में कैसे था, और एन पे अल्लाह अल्लाह तआला की कितनी नुसरत आई ना। जी सिस्टर आपने हैंडल किया, जी शेयर कीजिए प्लीज।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
नमस्कार।